नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। सेबेस्टियन मल्लबी की मोर मनी देन गॉड हैज फंड उद्योग का इतिहास, विश्लेषण और व्यक्तित्व केंद्रित अध्ययन है। यह पुस्तक 1949 में A.W. जोन्स के आरंभिक हेज फंड से लेकर 2007 से 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट तक की यात्रा को समझाती है। मल्लबी का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि कुछ निवेश प्रबंधकों ने असाधारण संपत्ति कैसे बनाई, वे यह भी जांचते हैं कि हेज फंडों ने बाजारों में मूल्य निर्धारण, जोखिम उठाने और सूचना के उपयोग को कैसे बदला। पुस्तक जॉर्ज सोरोस, जूलियन रॉबर्टसन और लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जैसे व्यापक रूप से चर्चित उदाहरणों के जरिए अलग निवेश शैलियों को स्पष्ट करती है। इसका केंद्रीय तर्क अपेक्षाकृत असामान्य है। मल्लबी मानते हैं कि सही संरचना और निवेशक अनुशासन के साथ हेज फंड जोखिम को बड़े सरकारी संरक्षण पाने वाले बैंकों की तुलना में अधिक निजी रूप से वहन कर सकते हैं। विस्तृत शोध और सरल वित्तीय व्याख्या के कारण यह वित्तीय इतिहास को सामान्य पाठक के लिए भी सुलभ बनाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले A.W. जोन्स का मॉडल, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का वास्तविक अर्थ। पुस्तक की शुरुआत हेज फंड की मूल संरचना से होती है जिसे A.W. जोन्स ने विकसित किया। पारंपरिक निवेशक केवल उन कंपनियों के शेयर खरीदता है जिनके बढ़ने की उम्मीद हो, इसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। जोन्स ने इसके साथ शॉर्ट सेलिंग जोड़ी, यानी ऐसे शेयर उधार लेकर बेचना जिनके गिरने की संभावना हो और बाद में उन्हें कम कीमत पर खरीद कर लौटाना। इस संयोजन का उद्देश्य हर परिस्थिति में लाभ की गारंटी देना नहीं था। इसका उद्देश्य बाजार के समग्र उतार चढ़ाव से पोर्टफोलियो की निर्भरता घटाना था। यदि चुने हुए अच्छे शेयर बाजार से बेहतर और चुने हुए कमजोर शेयर बाजार से खराब प्रदर्शन करें तो प्रबंधक की शोध क्षमता से रिटर्न आ सकता है, भले बाजार ऊपर जाए या नीचे। मल्लबी दिखाते हैं कि इस विचार ने निवेश को केवल बाजार की दिशा का अनुमान लगाने से आगे बढ़ाया। ध्यान सापेक्ष मूल्यांकन, कंपनी विशिष्ट जानकारी और गलत कीमत वाले अवसरों पर गया। हालांकि शॉर्ट पोजीशन जोखिम रहित नहीं होती क्योंकि किसी शेयर की कीमत बहुत ऊपर जा सकती है, इसलिए हेजिंग एक तकनीकी उपकरण है, सुरक्षा का वादा नहीं। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हेज फंड की पहचान किसी एक निवेश से नहीं बल्कि लचीलेपन, सक्रिय जोखिम नियंत्रण और प्रबंधक की जवाबदेही वाली संरचना से बनती है। दूसरा, अलग निवेश शैलियां, सोरोस का मैक्रो दृष्टिकोण और रॉबर्टसन का स्टॉक चयन। मल्लबी हेज फंडों को एक समान संस्था मानने की भूल नहीं करते। पुस्तक बताती है कि अलग प्रबंधकों ने अलग स्रोतों से बढ़त हासिल करने का प्रयास किया। जॉर्ज सोरोस का क्वांटम फंड वैश्विक मैक्रो निवेश का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें ब्याज दरों, विनिमय दरों, मौद्रिक नीतियों और राजनीतिक बदलावों जैसे बड़े आर्थिक कारकों पर दांव लगाया जाता है। इस दृष्टि में किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट से अधिक महत्वपूर्ण यह प्रश्न होता है कि किसी देश या मुद्रा व्यवस्था में तनाव कहां बन रहा है। इसके विपरीत जूलियन रॉबर्टसन का टाइगर फंड कंपनियों के गहन विश्लेषण, मजबूत व्यवसायों में लॉन्ग निवेश और कमजोर व्यवसायों में शॉर्ट निवेश के लिए जाना गया। इन उदाहरणों से पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष निकलता है कि हेज फंड की सफलता का कोई एक सूत्र नहीं है। कुछ अवसर व्यापक आर्थिक असंतुलन से आते हैं, जबकि कुछ निवेशकों की भीड़ गलत पूर्वानुमान या कंपनी संबंधी जानकारी के कमजोर मूल्यांकन से। फिर भी दोनों शैलियों में एक समान तत्व है, स्पष्ट निवेश थीसिस और उसके गलत सिद्ध होने पर नुकसान सीमित करने की क्षमता। मल्लबी व्यक्तित्वों का वर्णन करते हुए निवेश पद्धति और निर्णय प्रक्रिया को केंद्र में रखते हैं। इससे पाठक समझता है कि प्रसिद्ध नामों की नकल करना उपयोगी नहीं, लेकिन किसी रणनीति के पीछे के अनुमान, जोखिम और समय सीमा को समझना आवश्यक है। तीसरा, फीस संरचना और प्रोत्साहन, उच्च शुल्क के पीछे का आर्थिक तर्क। हेज फंडों पर सबसे आम आपत्ति उनकी ऊंची फीस है। पुस्तक इस आलोचना को नजरअंदाज नहीं करती बल्कि पूछती है कि शुल्क को किस तुलना के साथ देखा जाना चाहिए। पारंपरिक रूप से कई हेज फंड प्रबंधन के लिए संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा और लाभ पर प्रदर्शन शुल्क लेते रहे हैं। हाँ सर, और बाल्य ब्रह्मी दोपारिफ। इस व्यवस्था का तर्क यह है कि प्रबंधक का बड़ा पारिश्रमिक निवेशक के लाभ से जुड़ा हो, केवल जमा पूंजी के आकार से नहीं। मल्लबी के अनुसार यदि कोई प्रबंधक वास्तव में बाजार से अलग और बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न पैदा करता है तो ऊंची फीस भी निवेशक के लिए स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन यह तर्क हर फंड पर लागू नहीं होता। शुल्क तभी उचित हैं जब वे फीस के बाद बचे परिणाम जोखिम और वैकल्पिक निवेशों की तुलना में बेहतर सिद्ध हों। पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि बंद संरचना, सीमित निवेशक आधार और प्रदर्शन पर आधारित प्रतिष्ठा प्रबंधकों को खराब परिणामों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह बना सकती है। फिर भी प्रोत्साहन में विकृति संभव है। लाभ में हिस्सेदारी लेने वाला प्रबंधक अधिक जोखिम भी ले सकता है, विशेषकर जब नुकसान का भार निवेशक अधिक वहन करे।
इसलिए पुस्तक की सीख शुल्क का समर्थन करना नहीं, बल्कि शुल्क, जोखिम, तरलता और प्रदर्शन को एक साथ परखना है। केवल शानदार सकल रिटर्न देखकर निवेश निर्णय लेना अधूरा विश्लेषण है। चौथा, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज और मॉडल आधारित जोखिम की सीमा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण चेतावनीपूर्ण प्रसंगों में है।
यह फंड प्रतिभाशाली व्यापारियों और वित्तीय सिद्धांत से जुड़े विशेषज्ञों के कारण असाधारण प्रतिष्ठा रखता था। इसकी रणनीतियां अक्सर उन प्रतिभूतियों के बीच छोटे मूल्य अंतर पर आधारित थीं, जिनकी कीमतें सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के करीब आनी चाहिए थीं। समस्या यह थी कि अपेक्षाकृत छोटे अनुमानित अंतर से बड़ा लाभ कमाने के लिए फंड ने भारी लिवरेज का उपयोग किया।
जब बाजार असाधारण तनाव में आए, तरलता घटी और निवेशकों ने जोखिम वाले सौदे छोड़ने शुरू किए, तो वे संबंध अपेक्षित समय में सामान्य नहीं हुए।
मल्लवी इस प्रकरण से दिखाते हैं कि गणितीय मॉडल उपयोगी होते हुए भी बाजार की पूरी वास्तविकता नहीं पकड़ते।
मॉडल ऐतिहासिक आंकड़ों और कुछ मान्यताओं पर टिके होते हैं, जबकि संकट में भागीदारों का व्यवहार,
वित्त पोषण की उपलब्धता और घबराहट स्वयं कीमतों को बदल देते हैं। LTCM का पाठ यह नहीं कि परिष्कृत विश्लेषण बेकार है, पाठ यह है कि जोखिम को केवल औसत उतार चढ़ाव से नहीं मापा जा सकता।
लीवरेज, तरलता जोखिम, एक जैसी भीड़भाड़ वाली पोजीशन और प्रतिपक्षों के संबंधों को भी देखना पड़ता है।
पुस्तक हेज फंडों की प्रशंसा करती है, पर यह उदाहरण उसकी सीमा और विफलता की संभावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। अंत में वित्तीय संकट के बाद बहस,
निजी जोखिम वहन बनाम बैंकों का सामाजिक जोखिम, मोर मनी देन गॉड का सबसे विवादास्पद और विशिष्ट तर्क वित्तीय व्यवस्था में हेज फंडों की भूमिका पर है।
आम धारणा में हेज फंड गोपनीय, सट्टेबाज और अस्थिरता बढ़ाने वाले संस्थान हैं।
मल्लवी इस छवि को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते।
उनका तर्क है कि हेज फंड आमतौर पर संपन्न और अपेक्षाकृत समझदार निवेशकों की पूंजी लेते हैं, विफल होने पर निवेशक नुकसान उठाते हैं और उन्हें बैंकों जैसी जमा आधारित सरकारी सुरक्षा नहीं मिलती। इसके विपरीत बड़े बैंक कम पूंजी के सहारे विशाल जोखिम ले सकते हैं और संकट में उनकी विफलता पूरे भुगतान तंत्र को प्रभावित कर सकती है।
ऐसी स्थिति में करदाताओं द्वारा बचाव की संभावना पैदा होती है। इस तुलना के आधार पर मल्लवी हेज फंडों को जोखिम के निजी वहन का संभावित माध्यम मानते हैं।
फिर भी पुस्तक को इस दावे का अंतिम निर्णय नहीं समझना चाहिए। LTCM जैसे उदाहरण बताते हैं कि हेज फंडों की परस्पर जुड़ी पोजीशन और उधार बाजार पर दबाव डाल सकती है।
मुख्य नीति प्रश्न संस्था के नाम से अधिक उसकी लिवरेज, तरलता, पारदर्शिता और विफलता के प्रभाव का है।
यही दृष्टि पुस्तक को केवल उद्योग इतिहास नहीं बल्कि नियमन और नैतिक जोखिम पर गंभीर बहस बनाती है।
निष्कर्ष में यह पुस्तक निवेश, वित्तीय इतिहास और आधुनिक पूंजीवाद के पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
वित्त के विद्यार्थी इससे लॉन्ग शॉर्ट निवेश, मैक्रो ट्रेडिंग, लिवरेज और तरलता जैसे विचारों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझ सकते हैं।
निवेश पेशेवर अलग रणनीतियों की उत्पत्ति, प्रबंधक प्रोत्साहनों और जोखिम नियंत्रण की सीमाओं पर विचार कर सकते हैं।
सामान्य पाठक भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्लवी तकनीकी अवधारणाओं को व्यक्तियों, संस्थाओं और संकटों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं।
हालांकि पुस्तक का विस्तार और विवरण ध्यान मांगता है।
इसका व्यावहारिक लाभ किसी हेज फंड रणनीति की नकल करना नहीं है। असली लाभ यह समझना है कि रिटर्न के दावों के पीछे जोखिम, लिवरेज, शुल्क, तरलता और निवेशक संरचना को कैसे जांचा जाए।
समान वित्तीय संकट पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह केवल बैंकिंग विफलता या किसी एक बाजार दुर्घटना पर केंद्रित नहीं है।
यह कई दशकों में एक पूरे उद्योग की बौद्धिक और संस्थागत यात्रा प्रस्तुत करती है।
मल्लवी हेज फंडों के रंगीन और अत्यंत प्रतिस्पर्धी संसार को आलोचना रहित महिमा मंडन में नहीं बदलते।
फिर भी उनका झुकाव इस विचार की ओर है कि निजी पूंजी से जोखिम उठाने वाली संस्थाएं उपयोगी हो सकती हैं।
यही तर्क पाठक को सहमत होने के बजाय प्रमाण, सीमाओं और नियामकीय परिणामों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है।
इसलिए यह पुस्तक वित्तीय नवाचार और वित्तीय जोखिम दोनों को साथ समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सेबास्टियन मैलबई, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।